कंफर्म नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि संघ में भी पाइनएप्पल जूस लेते हैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। पाइनएप्पल अनानास कारण वही तो नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया बस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें जो कारण मालूम पड़ा है वो, पर जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं। आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिएगा, पर मेरा अपना सोचना है। ये बताएं कि शारीरिक विकृति किसी में हो वो जिनेंद्र देव की पूजा प्रक्षालन कर सकता कि नहीं? शारीरिक विकृति भी अलग अलग तरह की होती भैया हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि अंग भंग ना हो और कोई ऐसा रोग ना हो, व्याधि ना हो जो दूसरे को ट्रांसफर हो सकती हो, दूसरे को लगने वाली हो, वैसा रोग ना हो। इतना ही उसमें प्रक्षाल के लिए लिखा हुआ, अब ये देखना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं जिन्होंने ये लिखा है, लिख करके दिया है, उन्हीं को देना पसंद करूंगा, है ना? मेरे ख्याल से वैसे सबका अपना अपना नजरिया है, जो जैसे नजरिया से जिस चीज को देखता है उसको वैसी ही लगती है। भैया आपके अपने 5 या 25 लोग हैं आहार देने के लिए, और मेरा तो पराया कोई भी नहीं, बस इतना ही जवाब मुझे देना है। आपके अपने तो लोग 5 और 25 हैं, ठीक है ना? आप चाहते हैं कि वे ही दें, लेकिन मैं किसको पराया कहूं? आप तो कह सकते हैं कि ये हमारे अपने और ये पराये, लेकिन मेरे लिए तो जो भी आया है उस सबके, और उसमें भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन पहली बार आया है और कौन हमेशा, और किसकी उम्र निकल गई देते देते, और किसने आज अपने जीवन में शुरू किया है इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता, और कौन 50 किलोमीटर से हो, कौन 1000 किलोमीटर से आया है, और कौन जरा सा बाजू में से खिसक के आया है इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सब पे दया करके और फिर लेना पड़ता है ये प्रक्रिया। एक आध दिन आप करके देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आचार्य महाराज के सामने एक व्यक्ति ने एक दिन कह दिया था, मुझे याद है सन 1984 की बात है, कि महाराज किसी किसी से और किसी किसी के यहाँ तो हफ्ते भर में 2-2 बार और किसी के यहाँ पर हफ्तों आहार नहीं होते हैं, किसी से आप बहुत ले लेते हैं किसी से आप नहीं लेते हैं। तो आचार्य महाराज ने क्या जवाब दिया था? भैया उनके जैसे भाव बनाओ, तुम्हें यहाँ रोज हो और तुम्हें रोज देने मिले, मेरा आशीर्वाद है। इतना प्यारा जवाब दिया था। भैया सैकड़ों लोग देने वाले खड़े हैं, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग है, और वो परिणाम प्रभावित करते हैं सामने वाले को, उनकी श्रद्धा प्रभावित करती है, उसका पुण्य प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना, इसमें कोई शक नहीं। वर्षों हो गए मैं देखता हूं, इसलिए आपको इस प्रक्रिया में थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। मैं भी एक आध बार मैंने ऐसा कर लिया तो फिर दूसरी तरह से प्रश्न आने लगा, खिमलासा की बात है, लोगों ने कहा अरे वाह, महाराज भी थे उस समय, वाह बाहर वालों से ले रहे हैं, चौकी वालों से तो ले ही नहीं, आ हम तो सवेरे से काम में लगे हुए। हमने कहा ठीक, कल से सिर्फ चौकी वालों से लेंगे। 2-3 दिन चला मामला, फिर शिकायतें आने लगी, महाराज इतने चौका लगे हैं, सब जगह तो आहार हो ही नहीं पा, अभी तो आप कम से कम 1 ग्रास ले लेते, अब वो ही नहीं ले हमसे, हमारे 10 दिन बाद आहार हुई है, अब हम कहाँ तक खड़े रह गए, अब ले। अगर बाहर वालों से ले लो तो दिक्कत है, ने लो तो दिक्कत है, गत कहूं नहीं है। जैसो करो उसे में 4 जनों को जरूर परेशानी होगी। भैया किसी को सबको संतुष्ट तो कोई नहीं कर सकता, भगवान भी उतर के आ जावे तो सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ, ईसरी की घटना है सन 83 की, कई लोगों ने क्या क्या बातें कहना शुरू की। हम लोगों ने तो बहुत सारी चीजें उस समय त्याग, आचार्य श्री ने कहा छोड़ो, कह ले देखो तो मीठा को त्याग करे हैं और 150 रुपया किलो मुनक का खा रहे। अरे कहने वाले को क्या लगना कहने में, ये सब से गुजर चुके हम, इन सब चीजों से कोई अब बहुत सामान्य सी चीजें हो गई। इनसे पहले तो हमें थोड़ा लगने लगता था। तो संति राशि में हम थे, योग सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, सब संगे चले जा रहे भक्ति के बाद में, और आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो तो अब क्या करें कैसा करें, चरिया जितनी अपन से बनती उतनी। आचार्य श्री पीछे सुन रहे थे, हम लोगों को नहीं मालूम था, पीछे पीछे आ रहे थे। तो हमने एकदम देखा तो हमने कहा आचार्य श्री तो क्यों, क्या बात थी, अब हम लोग क्या करें, सिर नीचा करें। बोले सुनो, किसी के कहने पर ध्यान नहीं दो, अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो कोई कितना भी कहे उस पर विचार नहीं करना। अरहंतों जैसी चरिया भी करोगे तो दोष देखने वाला तो दोष देख ही ले, तुम जानबूझ के दोष मत करो। लेकिन अगर कोई अच्छी क्रिया में भी दोष निकाले तो उस क्रिया को छोड़ नहीं देना। कल के दिन कोई कहने लगे कि ऐसे आप बिना कपड़ा के अच्छे नहीं लगत नबूट, या कुछ पहन लो, तो क्या पहन लेंगे, क्या मोक्ष मार्ग छोड़ देंगे किसी के अच्छा नहीं लगने से। भैया इसलिए जो है इस प्रश्न के जवाब में मैंने इतनी बात, मैं सोच रहा था कि एक दो वाक्य कहूंगा पर इतना कह दिया। ऐसे पहले प्रश्न को माइक पर ना पड़े तो ठीक रहेगा। अरे वाह, कोई आहार संबंधी है और कोई विशेष नहीं है, पर ठीक है, कृपया इस संबंध में उदाहरण सहित सामान्य श्रावकों को समझाने का। अच्छा, मतलब इस प्रश्न को तो नहीं पढ़े लेकिन उत्तर दे देने तो लोगों को प्रश्न दूंगा। अरे वाह, आप बता बड़ी मुश्किल। देखो प्रश्न तो हमारा पढ़ के नहीं सुना रहा है और उत्तर दे देना, हम बताओ कैसा करें इसे। सब समझ जाएंगे, इतने बुद्धू समझ रहे थे वो लोगों को नहीं, सब समझदार बैठे, इसलिए हम प्रश्न, वो उनका व्यक्तिगत है वैसे, पर वो प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं, हम उनको पहचानते हैं, हम बाद में उनको जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ये आपकी राइटिंग से खतरा पैदा हो जाएगा, भले ही नाम नहीं लिखेगा लेकिन हम पहचान जाएंगे कि इनने लिखा होगा। 5 लब्धियां प्रश्न से मालूम पड़ जाता है कई बार। स्वाध्यायी है वैसा प्रश्न पूछेगा, अगर किसी ने अपनी पहले से धारणा बना ली है वैसा प्रश्न कहीं ना कहीं उसके पकड़ में आ जाएगा। उसको साधुओं के प्रति अच्छा भाव है, अच्छा भाव है तो वैसा प्रश्न आएगा, अच्छा भाव नहीं है तो वैसा प्रश्न, भाषा से मालूम पड़ जाता पूछने की। सब घड़ी रखो भैया, कितने बज गए, 5 लब्धियां, 3 करण, उपसम सम्यक दर्शन, क्षय उपसम सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक दर्शन, शायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो। अरे वाह, इनकी प्रक्रिया समझाने की कृपा करें। भैया सबसे पहले अपने को क्या करना, ये सब बड़ी बड़ी चीजें लग रही ना, अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, ये सब प्राप्त हो जाती कैसे। सबसे पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति खूब श्रद्धा रखना, जितना बने अपनी जितना शोपसम है उतना तत्व का अभ्यास करना, और फिर संसार और शरीर और भोगों की वास्तविकता जान करके रहना तो संसार में, लेकिन उदासीन होके रहना तो ये सब चीजें बहुत आसानी से प्राप्त। रही बात छायक सम्यक दर्शन की, तो इस बार तो होएगा नहीं, कितने ही प्रयास करो, क्योंकि केवली शुद्ध केवली का पाद मूल मिलेगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। पर क्षयोपम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन, तीनों करण, ये सब क्षयोपम सम्यक दर्शन और उपसम सम्यक दर्शन के पहले होते हो, 5 लब्धियां भी होती, इसलिए सब चीजें ये हो सकती, सिर्फ छायक सम्यक दर्शन को छोड़कर बाकी सब चीजें हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, तत्व का अभ्यास और संसार से उदासीनता अगर बना ले तो अपन को प्राप्त हो जाएगा। डरने की बात नहीं है, और खूब ज्यादा बड़ी प्रक्रिया भी नहीं है, आज ही से शुरू कर देते हैं अपन तो कल तक हो जाएगा। हाँ ऐसा है, अंतर मुहूर्त लगना है, अंतर मुहूर्त का काम है। एक बार परिणामों में अगर आ गई बात, वो तो ये है समझ लो कि कब हो सकता है जिनेंद्र भगवान के 20 साल से दर्शन कर रहे हो और एक क्षण मंदिर में घुसे थे 20 साल के बाद वो दर्शन किए और उसी क्षण सम्यक दर्शन, कहां से स्पार्क हो गया एकदम। और अपन को तो सिर्फ क्या करना, अपने को तो अपनी प्रक्रिया बनाए रखना निरंतर। पता नहीं किस क्षण होगा अपन नहीं जानते, अपन तो निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखें, अभ्यास करते रहें, संसार में रचे पचे नहीं, बस इतना हमारे हाथ में। बाकी कर्मों का छह छह उपसम उपसम होना हमारे हाथ में कहाँ है, वो तो अंतरंग की परिणति है, वो जिस क्षण होगी इसी अभ्यास से होगी। इसलिए आदिनाथ भगवान के पिताजी का नाम नाभी राय कैसे पड़ा, अब आपको मालूम तो है, पूछे यार आए हुआ है। उन्होंने 14वें नंबर के कुलकर थे, जब आखिरी कुलकर होते हैं उसके पहले तो जुगल पैदा होते हैं और उनको पालना पोषना नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी कुलकर के समय तक आकर के माता पिता अपने पुत्र पुत्री को उत्पन्न होते हुए देखते हैं, तब फिर उनके माँ के उससे जुड़े रहते हैं। अपन जब पैदा होते हैं तो नाभि से जुड़े रहते हैं, तब उसको तोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वो जो नाभि को पृथक करने की प्रक्रिया बताई थी, इसलिए नाभि राय उनके पिता का नाम रख दिया गया था। राजुलमती के ये नहीं मालूम हमें, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के जवाब बनने चाहिए, 90 नंबर में भी पास हो जाएंगे 10 नहीं वो मालूम नहीं हमारी, वो सच्ची में नहीं मालूम, इसलिए हमने ऐसा टाल दिया। वो प्रथमान योग का मामला है, प्रथमान योग में हम थोड़े कच्चे हैं, करणान योग में भी थोड़े कच्चे हैं। हमको आचार्य जी ने अध्यात्म शुरू से अधिक पढ़ाया, सभी को पढ़ाया, राग द्वेष मोह से बचना, बस इतना ही है तत्व का उपदेश, और बाकी तो सब याहू का विस्तार है। हाँ तो उतनी मोटी मोटी बात आती भैया, अब अगली बार फिर बनेंगे महाराज जी, फिर बाद में बहुत बढ़िया से करेंगे, इस बार तो ऐसे ही है। अन्न और फल में क्या अंतर है, अरे अन्न तो जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, ऐसी भाषा में समझना क्या, अन्न की वो चीजें जिनमें की कार्बोहाइड्रेट रिच रहता, आलू में भी ज्यादा रहता लेकिन उतना नहीं रहता जितना की चावल में रहता कार्बोहाइड्रेट। इस भाषा में फ्रूट्स वगैरह विटामिन होते हैं, और दोनों में इतना अंतर कर सकते हैं क्या, हम अन्न रात भी नहीं खाते फल खा लेते जबकि दोनों वनस्पति। अच्छा बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि अन्न और फल में अंतर क्या है, जब खाना है तो सब खाओ, है कि नहीं मजे से वो ये कहना चाह रहे हैं, रात्रि में आप अन्न तो नहीं खाते। देखो अपने यहां पर इतनी सी बात नहीं है, अपने यहां पर और भी बात है, आरंभ सारंभ किसमें ज्यादा करना पड़ता, रोटी बनाने में, सब्जी दाल बनाने में, और फल फूल एक ठो से फल खा लिया कुल्ला कर लिया खत्म। अब चूंकि रात में हम नहीं सो पाएंगे तो ये एक गिलास धरा है पानी, इसमें कम आरंभ हुआ 5 मिनट में हो गया काम, और अगर रोटी दाल सब्जी और सब आइटम रख कर और साथ होता है जीव राशि का घात, इसलिए अपने यहाँ पर उन चीजों का निषेध। ठीक है आपका प्रश्न तो अच्छा, हमें प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए अब बताओ, जबकि उसमें अनेक गुण हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि उसमें एक आधा ही गुण है, बाकी तो सब अवगुण ही हैं, इसलिए आप उसकी वकालत मत करो। आपको खाना है सुको, उसमें कहो तक नहीं पता नहीं लगन दू कि हम खाते लेकिन 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 आप उसको अच्छा मान के मत खाओ, वो खराब है तो खराब है, जमी गंध है वो पहले नंबर, तो जितने जमी गंध के दोष हैं वो सब उसमें, जमी गंध में कितने दोष हैं, एक फल खाने के लिए जहां पूरे वृक्ष को नष्ट करना पड़े वो जमी गंध, एक आलू के लिए पूरा 6 महीने जिंदा रहने वाला पेड़ नष्ट करते हैं, एक मूली एक गाजर एक एक प्याज के लिए पूरा ऊपर 6 महीने जिंदा रहने वाला पेड़ है उसको पूरा नष्ट करना पड़ता तब एक फल मिलता है, और जितने जमीन के अंदर ये होता है उसके चारों तरफ 1 स्क्वायर फीट की जो फर्टाइल सॉयल है उसमें मिलियंस ऑफ बिलियन बैक्टीरिया होते हैं और सिक्रीशन होता रहता हमेशा, तो और अधिक बड़े यूनिसेलुलर सेलुलर मल्टी सेलुलर बहु कोशीय जीव राशि वास में पैदा हो जाती, एल्गी फंगाई वगैरह तक पैदा हो जाती, वो सब उखाड़ने में नष्ट हो जाती। और इतने ही नहीं, एक एक जमीन कण से कई कई पेड़ पैदा होते हैं। एक आलू से 10-20 पेड़ पैदा हो सकते हैं। हमने उसे एक आलू को नष्ट करके आगे होने वाले 10-25 पेड़ों को नष्ट कर दिया जमीकंद के साथ। ये है, और जमीकंद एक्चुअली उस पेड़ का रिजर्व फूड है। वो आपके खाने के लिए नहीं था, वो रिजर्व फूड है। वो पेड़ आड़े समय में अपने लिए संचित करके, भोज्य पदार्थ है वो उसका, उसने संचित करके रखा था। लेकिन आपने उस पेड़ को भी नष्ट कर दिया, उसका संचित भोज्य पदार्थ भी अपने खाने में ले लिया। ये जमीकंद के 4 मोटे मोटे दोष हैं, इसलिए अपन जमीकंद नहीं खाते हैं। वही प्याज पे भी लागू होगा जो बाकी जमीकंद पे। हमारे साथ में प्राय ऐसा होता है कि हम सबका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, किंतु वही हमारे साथ दुर्व्यवहार करता। तो क्या हमें हमारे अशुभ कर्म का उदय है, या हमें ये सब कुछ हमेशा सहन करना पड़ेगा, या उसे उसी के तरीके से एहसास करा दिलाना होगा? तीनों तरीके देखिए। सबसे पहली चीज, तीनों सही है। अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो हमें उससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे साथ भला ही करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा हमारे साथ भला बुरा करेगा ये हमारे पुण्य पाप पे निर्भर है। हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे वो उसके पुण्य पाप पे निर्भर। हाँ, हमारे संस्कार पे निर्भर है। हमारे अच्छे करने के संस्कार होंगे तो हम दूसरे के साथ हमेशा अच्छा करेंगे, भले ही हमें रिटर्न में बुरा मिले। दुर्योधन से परेशान होकर के युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा था कि मैं इनके साथ हमेशा अच्छा करता हूँ और इनकी तरफ से मुझे रिटर्न हमेशा बेकार ही मिलता है। तो युधिष्ठिर को कैसे समझाया था कि सुनो, जैसे हवाएं अगर खुशबू वाले फूलों पर से जाएं तो वे सुगंधित हो जाती, और वे ही हवाएं अगर मरघट में से सड़ी हुई लाशों पर से गुजरें तो दुर्गंध लेकर के आती हैं। अब बताओ हवाओं का क्या दोष? तुम दूसरे को प्रेम देते हो, वहां से घृणा लौट के आती है, तो तुम्हारा दोष नहीं है। क्या करें, वो सड़ी गली जैसे कि लाश पर से हवा लौट के आती है, ऐसा ही तुम्हारा प्रेम वहां जाकर घृणा में बदल के आता है, तुम्हारा दोष नहीं। कोई पूर्व में हमने वैसे कर्म किए हैं जिसका फल हमें मिल रहा है, पहली चीज तो ये। फिर हमें अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो चीज हमारे साथ रिटर्न होके आती है उसको हमें सहन करना चाहिए, भला बुरा दोनों चीजों को। और तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि उसे उसी के तरीके से एहसास कराना चाहिए। ये बिल्कुल लास्ट स्थिति में है कि फिर हम उससे विड्रॉ कर लें। हम किसी के साथ भला करते हैं और हम देखते हैं कि बार बार वहां से बुरा ही आता है, तो अब हम चुप हो जाएंगे। उसकी तरफ से आचार्य महाराज कहते हैं कि फिर उपेक्षा नाम का संयम, न राग न द्वेष, हमारा आपसे कोई संबंध, तटस्थ हो जाए। तीसरी स्थिति आपने तीनों अपने आप ही लिख दी। तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पहली चीज, जो कुछ भी हमें यहाँ सुख दुख मिलता है उसमें हमारा वर्तमान का तो रहता ही है, हमारा पुराना भी हिसाब किताब रहता भैया, इसलिए। और दूसरी चीज, हमें हमेशा सुख दुख दोनों को सहन करने की आदत डालनी चाहिए, और जहाँ से हमें दुख ज़्यादा मिले वहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए कि भाई हम क्या करें, हम आगे तक आपका भला नहीं कर पाएंगे। श्रापक के लिए तो यही, मनुष्य अच्छी चीज़ों की आदतों की जगह बुरी आदतें जल्दी सीखता है जबकि वो जानता है कि वो गलत है, और उसमें ऐसा बन जाता है कि उसे छोड़ना मुश्किल होता है। जाने चय चिंतित जय जीव जरा मरण भय दुख विशेषु न विरजय अहो सुबद्धो माया गंठी हो। जब आचार्य भगवान इस बात पे स्वयं आश्चर्य करते हैं तो हम और आप तो आश्चर्य करेंगे ही। यही तो आचार्य महाराज कहते कि ये जीव जानता है कि सिवाय संसार में मैंने दुख के, जन्म मरण के और बुढ़ापे के दुख के कुछ नहीं पाया, फिर भी इसके बावजूद भी विषयों से विरक्त नहीं हो पाता, उन्हीं चीजों से जिनसे कि दुख पाता उनसे विरक्त नहीं हो पाता। कहते अहो आश्चर्यम इदम, इसमें बहुत आश्चर्य है। क्यों? कहते मिथ्यात्व की ग्रंथि बड़ी सुदृढ़, अपने हाथ से बांधा है और अपन ही अब मजबूर हो गए। इन खोटे संस्कारों को अपने हाथ से हम बांध लेते हैं फिर हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आत्मा की अनंत शक्ति है, एक बार अगर जागृत हो जाए तो ये खोटे संस्कार भी टूट सकते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पर है तो आश्चर्यजनक कि हम अपने लिए स्वयं दुख उत्पन्न करते हैं और फिर बचनी, जैसे अपन कहते हैं ना कि शराब पीने वाला पहले शराब पीता फिर बाद में तो शराब उसको पीना शुरू कर दे, फिर नहीं छोड़ पाता, लग गई उसको, एक बार लग गई तो उस, ये चीज ऐसे ही अपने साथ भी है। एक बार अपन ने उस मिथ्यात्व के चलते ऐसे खोटे कर्म बांध लिए कि फिर अपन मजबूर हो जाते हैं। को को समय ने आत्मा ने कर्म दावेश है, लेकिन को को समय ने कर्म ने आत्मा दावेश है। हाँ, वैसे तो हमेशा से कर्म आत्मा, कौन चाहता है कि मैं नरक जाऊं, लेकिन जब कर्म का नरक आयु और नरक गति का उदय आता है तो जीव अनंत शक्ति वाला होकर के भी नरक चला, लेकिन जिस समय उसकी आत्मा में जागृति आती है, दृष्टि निर्मल होती है, अनंत काल के अनादि काल से पड़े हुए समस्त कर्मों को एक क्षण में नष्ट करके और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भैया दोनों चीजें घड़ी नहीं रख रहे, मैं देखते रहूंगा। हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक उपदेश दिया या नहीं? भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल में दीक्षा ली, 12 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त किया 42 वर्ष की उम्र में, और फिर उसके बाद जो है 30 वर्ष तक, 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण हुआ, तो 30 वर्ष तक उपदेश दिया। केवल ज्ञान के बाद उनकी दिव्य ध्वनि 30 वर्ष तक अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्टली तो कुछ वर्ष कुछ महीने कम हो जाते हैं। संसार में उससे जीव मोक्ष लगातार जाते रहते हैं, वही संसार खाली क्यों नहीं हो जाएगा। कृपया उदाहरण, कल भी हमने बताया था कि ये चीज ऐसी है जिसमें से जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान कितना भी देते चले जाओ वो कभी एवर लास्ट कहना चाहिए उसको, कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ठीक इसी तरह से है, ये एक प्रक्रिया है कि अनंत आनंद जीव संसार से मोक्ष चले जाए, वहां भी अनंत आनंद जीव रहेंगे, यहाँ पर भी फिर भी अनंत आनंद रहेंगे। ये हमने कल भी जवाब, कृपया बताने की कृपा करें कि नरक गति, तिरंज गति, देवगति, मनुष्य गति शून्य है, दुखमय है, केवल मोक्ष गति ही सुखमय है। फिर ये प्राणी ऐसा कौन सा भव्य कर्म करे ताकि उसे शीघ्र से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। कहते हैं कि संसारी प्राणी जब तक संसार में रहेगा तब तक उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब तक वो एक भी कर्म शेष रहेगा मोक्ष नहीं मिल सकता। इसका अर्थ तो स्वामी ये हुआ कि प्राणी पहले कर्म का करना समाप्त करे, तभी तो पुराने संचित कर्मों की निर्जरा होकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या यही सत्य है? तनिक विस्तार से समझा मैं तो बड़ी कृपा होगी, कुछ गलत लिख दिया हो तो क्षमा करें भगवान, ऐसा उन्होंने बड़े उससे लिखा है, वो जैसा समझे हैं उसको कन्फर्म करना चाह रहे हैं। देखो ऐसा है, कर्मों के काटने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने उस अनंत सुख को नहीं पाएंगे, ये तो आपके समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे अगर अपने बांधे हुए संचित कर्मों को नष्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेंगे, और वही चीज कहलाती है तपस्या, उसी को कहते हैं साधना। तो सम्यक दर्शन के साथ जब हम तपस्या करते हैं तब जाकर के कर्मों का आगमन तो कम होता है और निर्जरा ज्यादा होती। जैसे अपन ने किसी से संपत्ति उधार ले ली और अब अपन को चुकता करनी है तो क्या करेंगे? अपनी कमाई बढ़ाएंगे और उसमें से बचा करके उसकी चुकता भी करेंगे, तब अपना भी काम चलेगा और उसका हिसाब भी चुकता होगा। ठीक इसी तरह से अपन को इस तरह से कर्म करना है, कर्म ऐसे करना जिससे कि कर्म का संचय तो ना हो बल्कि जो संचित कर्म है वे भी कटते चले जाए। ये टेक्निक, ये कर्म फिलॉसफी का मेन क्लू है कहना चाहिए, ऐसे कर्म करना जिससे कि हम मुक्त हो जाएं। बताइएगा, वे कर्म हमें बांधते हैं और वे कर्म हमें मुक्त कर देते हैं। उससे विपरीत, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि जिस खिड़की में से पक्षी भीतर कमरे में घुस के आता है घबराता है कि मैं अब कैसे निकलूं बाहर, यहां से निकलने का कोई दरवाजे नहीं है, उसे कौन समझाए कि जिस खिड़की में से आए हो दिशा बदल के उसी में से बाहर जा सकते, जिस मोह के चलते संसार में घुसे थे उसी मोह को छोड़ करके संसार से बाहर भी जा सकते हैं। निर्मोही होकर कोई कर्म करे हैं तो संसार से बाहर। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंध तबलों जबलों न राग, चिंता नहीं उदय से बन वीतरागी बन करके जो कर्म उदय में आते हैं उनको समता से हम भोगें तो नए कर्म नहीं बंधेंगे बल्कि पुराने कर्म एक एक करके अपना फल दे करके नष्ट होते। यही प्रक्रिया उसकी है, आचार्य भगवंतों ने यही प्रक्रिया दी भैया, वही आपको मैंने बता दी। और भैया निम्न प्रश्नों का ये हम एक में 10 प्रश्न लिखे हैं, एनी 5 नहीं लिखा इसमें। 10 क्वेश्चन लिखे, एनी इक्वल मार्क्स एवरी क्वेश्चन, ऐसा भी लिखा होता तो मजा रहता। अब क्या करें, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के तो जवाब नहीं दे पाएंगे, इनको अपन रख लेते हैं, आराम से देंगे। ये अभ्युदय निश्रेयस वाला हमने कल बता दिया था, जो सरल सरल से हैं वो पहले कर लेना चाहिए। प्रश्नों की काफ़ी जिज्ञासा है सबकी, कृपया शांत कर दीजिएगा। इसमें भी इन्होंने बहुत सारे प्रश्न, एक कागज पर एक प्रश्न लिखा हो तो बड़ी जल्दी हो जाता। ये भी छोड़िएगा, देना तो सबके उत्तर पढ़ेंगे, आज दें चाहे कल दें, कहाँ से शुरू करें, एक दो प्रश्न के उत्तर और हो सकते हैं बस। मैं, अरे आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं भजन सुनाता हूँ? अब ये पहले पता करूंगा कि किसने आपसे ऐसी बात कही। अच्छा, महावीर जी ने सुनकर, तब तो फिर कोई नहीं सुनाया। मैं सोच रहा था बच जाऊंगा ऐसा कहने से, लेकिन वो फंस ही गए। आज तो नहीं, आज जो है ना, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं, एक क्वेश्चन करेंगे फिर उसके। नो लाइन वाला सुना देते हैं, अग्निपथ, वही मुझे याद है, और तो भजन आता नहीं मुझे। ये इतने सारे क्वेश्चन जिनने लिखे हैं वे अपने क्वेश्चंस कल के लिए रख दें। नहीं, बहुत लोगों के हैं, 10-10 क्वेश्चन हैं, एक एक लिखे हैं। प्रश्न तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें तो पूरे जो है ये टाइप करके पूरे प्रश्न लिखे हैं, ठीक है, उनको रखें। बट हरिवंश राय बच्चन ने 9 लाइनें लिखी, तो वो चलिए आपके मन की बात। हाँ, वो ही कह रहे हैं, उसमें लगेंगे 5-1 मिनट। मुझे अभी यहाँ से उठ करके एक काम और करना है, वो ये है कि मुझे दुर्गापुर के वो दर्शन करके आना है, दर्शन करने जाऊंगा मैं। आप घबरायनी में चले जाऊं तो आप ये कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो आप भी हल्ला हो जाएगी। मैं दर्शन करके वापस आऊंगा। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंता नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंता नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सच है आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। मैत्री भाव करें, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे।
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे।
पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे,
दीन दुखी को पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे।
रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं,
भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं,
बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं,
इस जीवन में औरों का उपकार करूं,
औरों का उपकार करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।